प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं वो है अली बाबा और 40 चोरों के बारे में। और कहानी का नाम है अली बाबा 40 चोर। तो बच्चों, बहुत दिन हुए बगदाद में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम कासिम था और छोटे का अली बाबा। कासिम एक मालदार ताजिर था और अली बाबा एक गरीब लक्कड़हारा। कासिम एक बड़ी सी हवेली में रहता था और अली बाबा एक छोटे से टूटे फूटे मकान में। अली बाबा रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, गधों पर लाद कर शहर लाता और इन्हें फरोख्त करके जरूरत का सामान खरीदता। एक रोज अली बाबा लकड़ियां काटने जंगल में गया तो उसने दूर से कुछ घुड़सवारों को आते देखा। अली बाबा डर गया कि कहीं वो उसके गधे ना छीन लें। उसने अपने तीनों गधों को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और खुद एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया। घुड़सवार जंगल में दाखिल हुए तो एक आदमी ने, जो उन सब का सरदार दिखाई देता था, उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। तमाम लोग घोड़ों से उतर गए और घोड़ों की पीठों पर लदे हुए थैले उतारने लगे। जब वो थैले उतार चुके तो उन्होंने घोड़ों को दरख्तों से बांध दिया और थैले उठाकर एक बड़ी चट्टान की तरफ बढ़े। ये चट्टान उस दरख्त के बिल्कुल सामने थी जिस पर अली बाबा छुपा बैठा था। अली बाबा ने उन्हें गिना तो वो तादाद में 40 थे। बड़ी चट्टान के सामने पहुंचकर सरदार रुक गया और उसने आवाज लगाई, खुल जा समसम। आवाज लगाते ही चट्टान अपनी जगह से सरकने लगी और वहां एक दरवाजा नमूदार हुआ जिसके पीछे एक बहुत बड़ा गार था। तमाम लोग थैले कंधों पर उठाए उस गार में दाखिल हो गए। जू ही आखिरी आदमी गार में दाखिल हुआ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चट्टान सरक कर अपनी जगह पर आ गई। अली बाबा ने सोचा, अब मुझे दरख्त से उतर कर यहां से भाग जाना चाहिए। मगर फिर उसे ख्याल आया, अगर वो लोग बाहर निकल आए और उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेंगे। इस डर से वो नीचे ना उतरा। अली बाबा दरख्त पर बैठा सोच रहा था, ये लोग कौन हैं और उन थैलों में क्या था जो वो अपने साथ लाए थे। अचानक उसे ख्याल आया कि ये डाकू हैं, कहीं से माल लूट कर लाए हैं और अब उसे गार में रखने के लिए गए हैं। कुछ देर बाद वो लोग गार से बाहर निकले। जब सब बाहर आ गए तो सरदार ने चट्टान के पास खड़े होकर आवाज लगाई, बंद हो जा समसम। दरवाजा बंद हो गया और चट्टान सरक कर वापस अपनी जगह आ गई। तब वो घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से उस तरफ चले गए जिस तरफ से आए थे। उनके जाने के बाद अली बाबा दरख्त से नीचे उतरा और चट्टान के सामने खड़ा होकर जोर से बोला, खुल जा समसम। चट्टान अपनी जगह से सरक गई और अली बाबा गार के अंदर दाखिल हो गया। गार में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। एक कोने में सोने की अशरफियों की बोरियां रखी हुई थीं। अली बाबा ने अशरफियों की एक बोरी कंधे पर उठाई और गार से बाहर निकल गया। चट्टान के पास खड़े होकर उसने आवाज लगाई, बंद हो जा समसम। और चट्टान ने सरक कर गार का मुंह बंद कर दिया। अली बाबा भागता हुआ उन झाड़ियों के पास गया जहां उसने अपने गधों को छुपाया था। उसने अशरफियों की बोरी एक गधे पर ला दी, उसको लकड़ियों से ढांपा और गधों को हांकता हुआ तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने बोरी गधे पर से उतारी और अपनी बीवी को दिखाई। अली बाबा की बीवी इतनी ढेर सारी अशरफियां देखकर हक्का बक्का रह गई। तब अली बाबा ने उसको सारा किस्सा सुनाया और उसे ताकीद की कि वो ये बात किसी को ना बताए, अपने बेटे को भी नहीं। बीवी ने पूछा, तुम ये अशरफियां कहां रखोगे? अली बाबा ने जवाब दिया, मैं इन्हें गढ़ा खोद कर दबा दूंगा। बीवी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे इनको गिन तो लेने दो। ये कहकर वो बोरी में हाथ डालकर गिनने लगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अली बाबा ने कहा, तुम इन्हें जिंदगी भर गिनती रहोगी और फिर भी नहीं गिन पाओगी। बीवी ने कहा, तुम गढ़ा खोदो, मैं कासिम के घर से तराजू लेकर आती हूँ। अशरफियां तोल कर संदूक में रख देंगे और संदूक गढ़े में दबा देंगे। अली बाबा की बीवी कासिम के घर गई तो वो अपनी दुकान पर गया हुआ था। उसकी बीवी घर में मौजूद थी। उसने अली बाबा की बीवी से पूछा, तुम्हें तराजू की क्या जरूरत पड़ गई? अली बाबा की बीवी ने जवाब दिया, अली बाबा आटा लाया है, मैं उसे तोलना चाहती हूँ। कासिम की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने दिल में कहा, उसके पास इतना आटा कहाँ से आ गया, जरूर कोई बात है। ये सोचकर उसने तराजू के पलड़े में थोड़ा सा मोम चिपका दिया। अली बाबा की बीवी तराजू लेकर घर आई। अली बाबा ने अशर्फियां तोलकर संदूक में भरी और उसे गढ़े में गाड़ दिया। इसके बाद अली बाबा की बीवी तराजू लेकर कासिम के घर गई। उसे मालूम ना था कि तराजू के पलड़े में एक अशर्फी चिपकी रह गई है। कासिम की बीवी ने अशर्फी देखी तो हैरान रह गई। शाम को कासिम दुकान बंद करके घर आया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि अली बाबा की बीवी उससे तराजू मांगकर ले गई थी और उसने तराजू में सोने की अशर्फियां तोली हैं। कासिम हैरत से बोला, सोने की अशर्फियां? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अली बाबा और उसकी बीवी ने तो आज तक अशर्फी की शक्ल भी ना देखी होगी और तुम कहती हो कि उसने तराजू में अशर्फियां तोली हैं। इस पर कासिम की बीवी ने उसको तमाम बात बताई तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, मैं अभी अली बाबा के घर जाकर उससे पूछता हूं कि वो इतना माल कहां से लाया। ये कहकर कासिम अली बाबा के घर गया और उससे पूछा, तुम इतनी ढेर सारी अशर्फियां कहां से लाए हो? अली बाबा ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास अशर्फियां हैं? कासिम ने अली बाबा को सारा किस्सा सुनाया और वो अशर्फी भी दिखाई जो तराजू के पलड़े में चिपकी हुई मिली थी। अब झूठ बोलना बेकार था। मजबूरन अली बाबा को बताना पड़ा कि उसे अशर्फियां कहां से मिली हैं। कासिम बहुत लालची इंसान था। उसने अली बाबा को मजबूर किया कि वो उसे गार का पता और उसमें दाखिल होने का तरीका बताए। अली बाबा ने उसे गार का पता बताया और ये भी बताया कि गार का दरवाजा खुल जा समसम कहने से खुल जाता है और बंद हो जा समसम कहने से बंद हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कासिम उठकर घोड़े लेकर गार की तरफ रवाना हो गया ताकि एक ही फेरे में बहुत सारी दौलत समेट कर ले आए। थोड़ी सी तलाश के बाद उसे जंगल में वो चट्टान नजर आ गई। कासिम ने गार के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, खुल जा समसम। चट्टान अपनी जगह से सरक गई और वो गार में दाखिल हो गया। उसके अंदर जाते ही गार का दरवाजा बंद हो गया और चट्टान सरक कर अपनी जगह पर वापस आ गई। कासिम हीरे जवाहरात, अशर्फियों के थैले, सोने चांदी के जेवरात और कीमती कपड़ों से भरे हुए संदूक देखकर खुशी से पागल हो गया। बहुत देर तक वो ये सोचता रहा कि क्या ले जाऊं और क्या ना ले जाऊं। आखिर उसने हीरे जवाहरात और अशर्फियों और सोने की ईंटों से भरे हुए 8-10 थैले उठाए और दरवाजे के पास पहुंच गया। लेकिन खुशी के मारे वो इस कदर बदहवास हो चुका था कि खुल जा समसम के अल्फाज भूल गया। कभी कहता खुल जा सिमी सिमी और कभी कहता खुल जा सासूम। दरवाजा ना खुलना था ना खुला। वो दरवाजे को जोर जोर से धक्के देता और चीख चीख कर कहता, खुल जा समूरा समीरा, खुदा के वास्ते खुल जा सीमा समाई, मगर दरवाजा ना खुला। कासिम ये चीख पुकार कर ही रहा था कि डाकू लूट का दूसरा सामान लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने गार के बाहर कासिम के घोड़े बंधे देखे तो कहने लगे, मालूम होता है किसी को हमारे गार का पता चल गया है और उसे दरवाजा खोलने के खुफिया अल्फाज भी मालूम हो गए हैं। जब ही तो वो इतने घोड़े लेकर हमारा माल चुराने आया है, लेकिन अब हमसे बचकर कहां जाएगा? सरदार ने गार के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, खुल जा समसम, और चट्टान सरक गई, दरवाजा खुल गया। कासिम जो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था तेजी से बाहर भागा, लेकिन चोरों ने उसे निकलने का मौका ना दिया और तलवारें मार मार कर टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उसकी लाश के टुकड़े गार के अंदर डाल दिए और अपना सामान गार में रख कर वापस चले गए। जब शाम हुई और कासिम घर वापस ना आया तो उसकी बीवी रोती धोती अली बाबा के घर पहुंची और बोली, कासिम अभी तक घर वापस नहीं आया, खुदा के वास्ते उसे तलाश करो। ये सुनकर अली बाबा भी बहुत परेशान हुआ। कासिम जैसा भी था आखिर उसका भाई था। वो उसी वक्त जंगल में गया, गार का दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा। आखिर एक गोशे में कासिम की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। उसने उसे उठाया, बाहर लाकर गार को बंद किया और लाश गधे पर लादकर कासिम के घर ले गया। कासिम की बीवी शोहर की लाश देखकर रोने पीटने लगी। अली बाबा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब सबर करो और इसके कफन दफन का बंदोबस्त करो। कासिम की नौकरानी मर्जीना बहुत अकलमंद और वफादार लड़की थी। उसने अली बाबा से कहा, डाकुओं ने आका के टुकड़े कर दिए हैं, इस हालत में इन्हें नहलाना कफनाना और दफनाना बहुत मुश्किल है। लोग समझ जाएंगे कि किसी ने कत्ल किया है और फिर ये बात पुलिस तक पहुंचेगी। मैं एक ऐसे बूढ़े मोची को जानती हूँ जो हकीम भी है और जर्राह भी। वो इस लाश को सीकर एक कर देगा। इसके बाद लोगों को कोई शुबा नहीं होगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं उसको ले आऊं। अली बाबा ने कहा, ये तुमने अकलमंदी की बात की है। उस आदमी को जरूर ले आओ, लेकिन क्या वो इस बात को राज में रखेगा? मर्चीना ने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। आप कोई फिक्र ना करें, मुझे दो अशर्फियां दे दें।